If someone is studying science and seems to be going away from deen, is there anything in the Quran which we can say to him to help him change his mind? And should we look for science in the Quran?
ये मैं कभी इसको समझ नहीं पाया. साइंस का बिल्कुल एक अलग दायरा है, यानी साइंस का इल्म आपके इल्म में होना चाहिए कि साइंस फ़लसफ़े के बतन से पैदा हुई है. और बुनियादी मसला क्या था जिसके बाद साइंस पैदा हो गई और ये अजीम तरक्की हुई? एक फ़ैसला किया अहले इल्म ने, वो फ़ैसला ये था कि हमारे लिए मा बाद तबीयात मेटाफिज़िक्स या एथिक्स के मामलात को सुलझाने का कोई अकल में ज़रिया नहीं है, तो हम इन मामलात को अलग करते हैं और हम मादे पर तहकीक करेंगे. यानी ये जो मैटर है, दुनिया में एक मादा है, मैटर है, और एक नफ्स है जो आपके अंदर है. उन्होंने नफ्स को भी मौजू नहीं बनाया, सिर्फ मादे को मौजू बनाया, उसके कवानीन लॉज दरियाफ्त किए और हैरत अंगेज़ दुनिया पैदा कर दी. इसका मज़हब के साथ क्या तसादुम है, मैं कभी नहीं समझ सका इसको. मादे के कवानीन का मुताला है, कदीम ज़माने में लोग नफ्स के कवानीन का मुताला करते थे. मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ, बरसों मैंने उसको पढ़ा है, आज भी कोई नई चीज़ आती है तो फ़ौरन पढ़ता हूँ. तो मुझे हमेशा हसरत रही है कि बताइए क्या चीज़ है जिसमें मज़हब से तसादुम हो गया. मज़हब का मौजू मादे की तहकीक नहीं है, साइंस का मौजू ये है. वो मादे की तहकीक करेगी, कवानीन दरियाफ्त करेगी, नई ईजादात करेगी, नई सहूलतें पैदा करेगी, नई दुनियाएँ दरियाफ्त करेगी. मज़हब का मौजू आपकी आने वाली ज़िंदगी है, मज़हब का मौजू मौत है. तो इस वजह से ये दो बिल्कुल अलग अलग मैदान हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. ये ऐसे ही है कि एक डॉक्टर का काम यह है कि वह आपको सेहत के बारे में मशवरा दे, इंजीनियर का काम यह है कि आप उससे मकान का नक्शा बनवा लें या कोई पुल तामीर करा लें. पैगंबर आपको ये बताने आए हैं कि आपकी इस ज़िंदगी के बाद क्या होने वाला है. इस पर साइंस ने कोई तहकीक कर ली है, कोई नतीजा निकाल ली है, कोई नई दुनिया दरियाफ्त कर ली है, कोई मौत के मसले का हल तलाश कर ली है? तो सवाल यह कि तसादुम किस जगह है. साइंस का मौजू मादे की तहकीक है, अभी तो वह नफ्स की तहकीक का दरवाज़ा भी खोलने के लिए तैयार नहीं है. यानी आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो फ़लसफ़े से साइंस अलग हो रही थी, तो इल्म नफ्सियात या साइकोलॉजी को जब अलग किया गया तो इसको इब्तिदा में कहा जाता था ये सोल की साइंस है, रूह की साइंस है. थोड़े अरसे में साइंसदानों को एहसास हुआ कि सोल तो तजर्बे और मुशाहदे में आने की चीज़ ही नहीं है. तो फिर इसमें तरमीम की गई कि हम सोल की साइंस नहीं बना सकते, ये हमारे बस में नहीं, हम बिहेवियर को देखेंगे. तो अब साइकोलॉजी साइंस बिहेवियर की साइंस है, यानी मुझसे क्या रवैये सादर होते हैं, मैं क्या करता हूँ, लोगों से क्या मामला करता हूँ. तो साइंस का असली कमाल यही है कि उन्होंने अपनी आजजी का एतराफ़ करके अपनी ज़िंदगी शुरू की थी कि हम सिर्फ उस दायरे में महदूद रहेंगे जिसको हम तजर्बे और मुशाहदे से गुजार सकते हैं. ये बहुत बड़ा इनकलाब था. चुनाचे साइंस की कोई आला किताब आप उठाएं तो वो शुरू यहाँ से होती है कि हमने वाए का जवाब, क्यों का जवाब तर्क कर दिया है, हम हौ पर आ गए. तो इस वजह से अज़रा है करम, अगर तो साइंस पढ़ने का शौक़ है तो ज़रा आला दर्जे की साइंस पढ़िए. ये कोई तरीका नहीं है कि ये ख्याल करके अच्छा साइंस ने मादे का ये कानून दरियाफ्त कर लिया, ये कानून दरियाफ्त कर लिया, तो इससे मज़हब को ख़तरा लायक हो गया. मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि दुनिया की तारीख में जितनी किताबें और जितने इल्म इंसान ने पैदा किए हैं उनमें से किसी इल्म की उम्र 100 साल से ज़्यादा नहीं हुई, किसी भी इल्म की. किस मानी में, यानी 100 साल भी नहीं गुजरते तो मालूम होता है कि इस किताब में तो 10 खामियाँ नज़र आ गई हैं, मालूम होता है कि इस इल्म में तो बहुत सी चीज़ें गलत साबित हो गई हैं. 1938 में अल्लामा इकबाल ने वफात पाई है, हमारी मिल्लत के एक बड़े गैर मामूली शख्सियत हैं. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम उनके खुतबात हैं, ये 1938 से चंद बरस पहले दिए गए हैं. आज मैं 20 बातों की निशानदेही कर सकता हूँ जो तहकीक से गलत साबित हो गई. उन्होंने सुनी सुनाई बात पर यह शेर कह दिया कि तारक जुबर सफ़ीना अंदलुस, तारक जुबर किनारा अंदलुस सफ़ीना सोख्त. तहकीक से मालूम हुआ कि तारक ने कोई जहाज़ नहीं जलाए थे. यानी एक इंसान, बहुत बड़ा इंसान, ज़िंदगी पर, उलूम पर, तारीख पर बात करता है और 100 साल भी नहीं गुजरते, अभी 100 साल नहीं हुए, तो गलती सामने आनी जाए. آپ کے علم میں ہے قرآن مجید کو نازل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا. انسانی کلام کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 سال ہوئی، ایک لفظ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکا. آج بھی حیرت ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ دنیا جو توہمات کی دنیا تھی، وہ دنیا جو کہانیوں کی دنیا تھی، وہ دنیا جو قصوں کی دنیا تھی، اس میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ کس کی کتاب ہے، ایک بدو جس نے کبھی پڑھا لکھا نہیں تھا وہ کلام کر رہا ہے، اور آج بھی اس کی پیش کی ہوئی کتاب زندہ اور پائندہ موجود ہے. تو اس لیے سائنس کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے تو زندگی کی ابتدا یہاں سے کی تھی، پیدا یہاں سے ہوئی تھی کہ نہیں، اب ہم ان امور کو نہیں چھیڑیں گے، وہ فلسفے کا موضوع ہے، ہم صرف مادے کے قوانین کی تحقیق کریں گے. اور مادے کے قوانین کی تحقیق میں سائنس نے بڑے کمالات دکھائے ہیں، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سے تجاوز کر کے سائنسدان کوئی بات ارشاد فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے، ایاز قدر خود بشناس، یہ آپ کا دائرہ نہیں، اس کے علوم دوسرے ہیں، اس کے دلائل دوسرے ہیں، آپ جس علم کے ماہر ہیں اس پر گفتگو کریں. تو اس علم میں ابھی نہ موت زیر بحث ہے، نہ زندگی کی حقیقت زیر بحث ہے، یہ سارے ابھی اسی طرح کے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. زندگی جس شکل میں موجود ہے سائنس اس کا مطالعہ کر رہی ہے، ہاؤ، کیسے ہو رہا ہے. وہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ مرغی کے انڈے سے بچہ کیسے نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے یہ نہیں بتا سکتا، یہ اس کا دائرہ نہیں ہے.